ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय क्रमांक 25 श्लोक 13। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद् भक्तवत्सल। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद् भक्तवत्सल। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिताद् भक्तवत्सल। कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण महाभाग हे परम भाग्यशाली त्वन्नाथम अपने स्वामी गोकुलम गौओं के समुदाय को प्रभो हे स्वामी त्रातुम अर्हसि रक्षा कीजिए देवान इंद्रदेव से नह हमको कुपितात कुपित भक्तवत्सल हे भक्तों के वत्सल। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। गोपों तथा गोपियों ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे भाग्यशाली कृष्ण, आप इंद्र के क्रोध से इन गौओं को उबारें। हे प्रभु, आप अपने भक्तों पर इतने वत्सल हैं, कृपया आप हमें भी बचा लें। तात्पर्य, कृष्ण जन्म के समय गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी, अनेन सर्व दुर्गाणि यूयम अंजस तरिष्यत। इनकी कृपा से आप आसानी से सारे कष्टों को पार कर लेंगे। वृंदावन वासियों को पूर्ण विश्वास था कि ऐसी भारी विपत्ति में श्री नारायण उनकी रक्षा करने के लिए कृष्ण को शक्ति प्रदान करेंगे। उन्होंने श्री कृष्ण को सर्वस्व मान रखा था और श्री कृष्ण उनके प्रेम को अंगीकार कर चुके थे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपां जाग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धोर्जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
हरे कृष्णा। सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि कृपया अपना मोबाइल फोन साइलेंट मोड में करें या स्विच ऑफ मोड।
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। गोवर्धन लीला से शिक्षाएं, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आज का श्लोक जिसमें सारी गोपियां, गोप, ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाकर याचना करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे भाग्यशाली कृष्ण। इसका अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण जो कि सभी प्रकार के जो भाग्य हैं उसके स्रोत हैं। कृपया करके हमें क्रोधित इंद्र के प्रकोप से बचाइए। हमारे पिछले सेटिंग में हमने चर्चा की थी, गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की महिमा का बखान इस प्रकार से किया जैसे किसी भक्त ने आज तक नहीं किया है। द पिनिकल ऑफ कृष्ण प्रेम। तो पिछली बार हमने चर्चा की भगवान गोपियों को क्यों छोड़कर गए, या भगवान गोपियों जैसे भक्तों को क्यों छोड़ते हैं बीच बीच में, या प्रश्न है कि क्या भगवान अपने शुद्ध भक्तों को कभी छोड़ते हैं, क्या कभी भगवान अंतर्धान हो सकते हैं अपने शुद्ध भक्तों की चेतना से? कदापि नहीं। तो पांच कारण हमारे आचार्य देते हैं, भगवान ने ये दिए, गोपियों ने जो प्रश्न पूछे थे अपने उत्तर में। कृष्णा वॉज टेस्टिंग हिज ओन इंटेंसिटी ऑफ लव, कि मैं अपने शुद्ध भक्तों के विरह में कौन से प्रेम का अनुभव कर सकता हूं, या कौन से श्रेणी के प्रेम का अनुभव कर सकता हूं। प्रेम विरह सरोवर उत्पन्न कर दिया उस विरह अग्नि में, उस प्रेमाग्नि में, शुद्ध प्रेमाग्नि में। तो ये सबसे पहला कारण। दूसरा कारण हमने सुना पिछली बार, भगवान गोपियों के प्रेम में और वृद्धि लाना चाहते थे और उनके प्रेम को प्रगाढ़ करना चाहते थे, इसलिए भगवान अंतर्धान हुए। तीसरा कारण, भगवान गोपियों को अपने जीवन से अलग नहीं करना चाहते कभी, या गोपियों के प्रेम को खोना नहीं चाहते, इसलिए उस प्रेम को बरकरार रखने के लिए हर समय उस प्रेम में एक जीवन बना रहे। टू पुट लाइफ इन रिलेशनशिप, भगवान अपने भक्तों के साथ इस प्रकार के आदान प्रदान करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण बुक में ये कारण दिया है, कृष्ण एक्ट्स अनप्रेडिक्टेबली सो दैट डिवोटीज डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। ही ऑलवेज कीप्स हिज डिवोटीज ऑन टोज बिकॉज ही नेवर वॉन्ट्स दैट हिज डिवोटीज शुड टेक हिम और हिज कृष्ण कॉन्शियसनेस फॉर ग्रांटेड। और पांचवा कारण हमने सुना, भगवान श्री कृष्ण इतना विश्वास करते थे, यदि इसे हम अंधा विश्वास कहें गोपियों के ऊपर, कि भगवान जानते थे यदि मैं अलग भी हो जाऊं शारीरिक रूप से इनसे, परंतु ये गोपियां कभी मुझे छोड़ेंगी नहीं। इनकी जो वफादारी है, इनकी जो निष्ठा है, वो इतनी पक्की है कि चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्य कहते हैं कि शुद्ध भक्त किसे कहते हैं, कि यदि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उसे कह दें कि कोई आसार नहीं है तुम्हारे मुझे प्राप्त करने के, तो भी वो भक्त भगवान की भक्ति नहीं छोड़ेगा। इसे कहते हैं दृढ़ विश्वास। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये प्रश्न पूछते हैं, क्या भगवान श्री कृष्ण कभी क्रूर हो सकते हैं अपने भक्तों के साथ? कैन लॉर्ड कृष्णा बी एनी टाइम क्रूअल टुवर्ड्स हिज डिवोटीज. चक्रवर्ती पाद ये प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या लगता है आप लोगों को, कैन लॉर्ड कृष्णा बी एनी टाइम क्रूअल टू अस? हां कि ना? तो क्या अब तक आपने केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा, प्रेम, स्नेह केवल उसका ही अनुभव किया है? उसके अलावा भगवान श्री कृष्ण वज्रपात की तरह व्यवहार करते हैं, उसका अनुभव किया है? या दुर्लक्षता, टोटल निग्लेक्ट? चक्रवर्ती पाद कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं. जिस प्रकार से सूर्यदेव कभी अंधकार को पैदा नहीं कर सकते, संभव है सूर्यदेव अंधकार को पैदा करें? जस्ट लाइक सन cannot create darkness, similarly Lord Krishna can never be cruel towards his devotees, towards any living entity for that matter. That is how pure devotees, they understand the mercy aspect of Krishna. बहुत सुंदर उदाहरण सूर्यदेव का चक्रवर्ती पाद ने दिया. तो अब गोपियों ने जो विलाप किया, यह कहा गया है कि केवल 11 साल ब्रजवासियों के साथ भगवान ने समय बिताया, अपना संग दिया, और एक पूरी सदी, वन होल सेंचुरी ऑफ सेपरेशन, 11 years of association, one century of separation. 100 साल का विरह और एक तरफ 11 साल का संग. और आप कहते हो कि भगवान श्री कृष्ण कभी क्रूर नहीं हो सकते. वृंदावनम परित्यज्य पदम न गच्छति, एक कदम भी भगवान वृंदावन से बाहर नहीं निकालते. ये ऊंचे स्तर पर आचार्य बताते हैं कि भगवान कभी अपने ब्रजवासियों को छोड़कर नहीं गए. तो फिर ब्रजवासी भगवान के जाने के पश्चात ऐसे विरह में क्यों थे? हमारे आचार्य कहते हैं कि उद्धव जी को जब भगवान ने भेजा वृंदावन सांत्वना देने के लिए, तो यदि भगवान वृंदावन छोड़कर गए नहीं तो उद्धव जी को भेजने की क्या जरूरत थी, और वो भी सांत्वना देने के लिए. उद्धव को भगवान ने इसलिए भेजा क्योंकि स्वयं श्रीमान उद्धव सोच रहे थे कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मुझे जो प्राप्त है, और मेरी जो सराहना भगवान करते हैं और अन्य भगवान के पार्षद जो करते हैं, तो थोड़ा सा गर्व उद्धव जी के अंदर आ गया था. तो भगवान उद्धव जी को थोड़ा रिपेयर करना चाहते थे, उनका गर्व ठीक करना चाहते थे, इसलिए उनको वृंदावन भेजा. यदि यहां बैठे बैठे तुम ये सोच रहे हो कि तुम सबसे बड़े भक्त हो मेरे, तो जाओ वृंदावन में मेरी असली भक्ति का एक नमूना देख कर आओ. तो उद्धव जिनको कोई अंदाजा नहीं था, द्वारका वासियों को कोई अंदाजा नहीं था, मथुरा वासियों को कोई अंदाजा नहीं था कि ये ब्रजवासियों का प्रेम है क्या, कैसा प्रेम है ये। रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि जैसे एक सोने के कलश में आप हीरे को रखो और उस हीरे के ऊपर, उस सोने के कलश में आप गाढ़ा घी अंदर डालो, तो क्या वो हीरा अब दिखाई देगा उस गाढ़े घी के नीचे? नहीं। कब दिखाई देगा? जब उस घी को पिघला दो। तो रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि द्वारका मथुरा वासियों का जो प्रेम है वो पिघला हुआ घी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य रूपी हीरे को वो देख पाते हैं। और ब्रजवासियों का प्रेम है वो गाढ़े घी के समान, जहां पर भगवान के ऐश्वर्य रूपी हीरे को बिल्कुल दिखाई उनको नहीं देता। तो ऐसा प्रेम, ऐसा गाढ़ा प्रेम इन ब्रजवासियों का। उद्धव जी जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो वो देखते हैं कि जमुना, जो कि प्रसिद्ध है वृंदावन में बहने के लिए, जमुना के साथ एक और नदी बह रही। तो उद्धव जी जो कि बहुत बड़े विद्वान हैं, तो वो अपनी विद्वत्ता से ये प्रश्न अपने आप को पूछ रहे हैं कि ये दूसरी नदी कब से बहने लगी जमुना के अलावा वृंदावन में। जय श्री राधा मदन गोपाल जी की। तो दूसरी नदी कौन सी थी? आंसुओं की, आंसुओं की नदी नंद भवन से बह रही थी। उद्गम स्थान, जैसे जमुना का उद्गम स्थान जमुनोत्री है, गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री है, तो ये अश्रुओं की नदी का उद्गम स्थान नंद भवन, नंद और जसोदा, और सारे ब्रजवासी रोज वहां इकट्ठा होते और वो एक ही कार्य करते, भगवान श्री कृष्ण के विरह में अश्रु प्रवाहित। तो ये उद्धव जी ने अब प्रवेश किया है वृंदावन में और वो आश्चर्यचकित बेवाक रह जाते हैं जब वो ब्रजवासियों का ऐसा प्रेम देखते हैं। फिर भी वो परखना चाहते हैं कि ब्रजवासियों, विशेष रूप से गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितना गहरा है। तो गोपियों की परीक्षा लेने के लिए उद्धव जी गोपियों से कहते हैं कि आपके साथ आपके आराध्य भगवान श्री कृष्ण केवल 11 साल रहे और फिर आपको छोड़कर चले गए, तो क्या ये इंसाफ किया उन्होंने आपके साथ? ना इंसाफी, क्या गलती थी आप लोगों की कि आपको इस प्रकार से छोड़कर चले गए? तो क्यों ऐसे गद्दार कृष्ण के आप भक्त बने हुए हो? गद्दार समझते ना, क्यों ऐसे गद्दार कृष्ण के आप भक्त बने हुए हो जिन्होंने ऐसा संग और ऐसा आश्वासन दिया, ऐसा प्रेम दिया, ऐसा स्नेह आप लोगों के साथ उनका आदान प्रदान हुआ, और ये सब कुछ जब पीक पर था छोड़कर चले गए। तो भगवान श्री कृष्ण को उद्धव जी गद्दार कह रहे हैं। क्यों? वो जानना चाहते थे कि गोपियों की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या गोपी और राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के गद्दार होने के इस प्रस्ताव पर सहमत होंगी? आप लोग सहमत हैं? हम लोग कहेंगे क्या फर्क पड़ता है प्रभु जी, तो ये प्रश्न है अब बहुत ही गहन प्रश्न है उद्धव जी ने जो पूछा गोपियों की गोपियों से कि क्यों ऐसे गद्दार कृष्ण के लिए अब तक आंसू बहा रहे हो तुम लोग। गोपियों ने सुन लिया, सुनना चाहते हैं गोपियों ने उत्तर में क्या कहा। पांच प्राणियों के उदाहरण गोपियों ने दिए और गोपियों ने उद्धव जी से कहा कि हमारी और कृष्ण की बात कर रहे हैं आप, हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति क्या है उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं आप, हमारे और कृष्ण के प्रेम, कृष्ण और हमारे प्रेम, हमारे इन आदान प्रदान को तो आप थोड़ा अलग रखिए फिलहाल, उसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, पहले तो हम आपको इस भौतिक संसार के कुछ प्राणियों का उदाहरण देते हैं, जानवरों का उदाहरण देते हैं, कुछ पशुओं का उदाहरण देते हैं, उनकी वफादारी। वी विल गिव सम मंडेन मटीरियल एग्जाम्पल्स ऑफ लॉयल्टी ऑफ सम लोअर क्रीचर्स ऑफ दिस मटीरियल वर्ल्ड, फॉरगेट अबाउट आवर लॉयल्टी टू कृष्णा। उद्धव जी गोपियों का भी ये प्रवचन सुनने वाले हैं, पांच उदाहरण वफादारी के, पांच उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण गोपियां देती हैं चातक पक्षी। गोपियां कहती हैं हमारे और कृष्ण के संबंध के विषय में प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो उद्धव जी। सबसे पहला उदाहरण हम चातक पक्षी का देते हैं कि चातक पक्षी का जो स्नेह बारिश के बादलों के साथ कैसा होता है। यह चातक पक्षी जो पूरे वर्ष भर निर्जला करता है, पूरे वर्ष भर निर्जला करता है इस प्रतीक्षा में कि जब बारिश का बादल, वो भी स्वाति नक्षत्र में जब बारिश की बूंद बरसाएगा तो वही वो पिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं, ये उसका स्टैंडर्ड है। तो चातक पक्षी उसकी वफादारी इस प्रकार की कि बारिश के मौसम में साल में एक बार, वो भी स्वाति नक्षत्र में जो बादल बूंदे बरसाते हैं केवल उसी को वो चातक पक्षी ग्रहण करता है, परंतु अधिकांश समय बहुत से चातक पक्षी उस बारिश की बूंद को अपने गले के नीचे उतारने से पहले वो शिकार बनते हैं उसी बादल से छोड़ा हुआ वज्रपात के, बिजली का। कई बार बारिश से पहले बादल जो हैं वो बिजली बरसाते हैं और बहुत से मनुष्य भी संसार में बिजली का शिकार बनकर मर जाते हैं। तो गोपियां उदाहरण दे रही हैं कि चातक जो इतना वफादार रहता है उस बादल के प्रति, उस बारिश के बादल के प्रति, कि चाहे कितने भी सरोवर, कितनी भी नदियां मीठा जल उनको दे रही हो पीने के लिए साल भर, नहीं स्वीकार करते, केवल वो बादल, बारिश के बादल का जल स्वीकार करते हैं। और अक्सर वो बादल ऐसा गद्दार निकलता है तुम्हारी भाषा में, उद्धव जी की भाषा में गोपियां कह रहे हैं कि ऐसा गद्दार निकलता है ये बादल कि वो उसी बेचारे चातक को जिसने प्रतीक्षा की वफादारी के द्वारा उसको बिजली उस पर बरसा कर मार डालता है, जलाकर भस्म कर देता है, परंतु अन्य चातक वो फिर भी अपनी वफादारी छोड़ते नहीं बादलों के प्रति जो अब तक जीवित हैं। और आप हमारी बात कर रहे हो, तो ये पहला उदाहरण चातक पक्षी का वो दे रहे हैं, चातक पक्षी की वफादारी। दूसरा उदाहरण वो देते हैं भंवरा, जब वो पंकज कोशे जो कमल का पुष्प होता है उसके मध्य में जब उसकी सुगंध से आकर्षित उसकी वफादारी होती है उस कमल के पुष्प की सुगंध के प्रति, और वही कमल का पुष्प रात्रि के समय वो अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लेता है और वो भंवरा उस पंकज या उस कमल के अंदर घुट घुट कर मर जाता है रात भर, परंतु अन्य जो भंवरे हैं जो प्रवेश नहीं कर पाए सुबह के समय, अब तक सूर्योदय से पहले वो कमल का पुष्प खिला नहीं है, उसकी पंखुड़ियां बंद है, उस बंद पंखुड़ियों के अंदर पहले के भंवरे मरे हुए पड़े हैं, परंतु बाहर के अन्य भंवरे फिर भी मंडरा रहे हैं कि हमें अंदर जाने दो, पता है कि हम आज जाएंगे शाम को हमारी भी मौत होने वाली है, परंतु वो अपनी वफादारी छोड़ते नहीं, जानते हुए कि हमारे मौत का कारण यही कमल का पुष्प बनने वाला है। तो वही कमल का पुष्प जो गद्दार निकलता है उनके मौत का कारण बनता है, परंतु ये भंवरे अपनी वफादारी नहीं छोड़ते। आप हमारी बात कर रहे हो, तीसरा उदाहरण मछली का। मछुआरा मछली पकड़ने जाता है किसी सरोवर में या समुद्र में, मछली पकड़ने जाता है, वो जाल फेंकता है और जाल में जब तक कि वो जाल को अपने नाव पर खींचता नहीं तब तक उस जाल में, जब तक कि वो जाल सरोवर पानी के सतह के नीचे है तब तक उस जाल के अंदर मछली और मछली के साथ वो जल उस सरोवर का दोनों रहते हैं उस जाल के अंदर, जब तक कि उस जाल को नाव तक खींचा नहीं जाता। तो गोपियां कह रही हैं कि वो मछली जो पैदा होने से अपने अंत तक उसने संग किया उस जल का, उस सरोवर के जल का, कितना गहरा संबंध मछली का जल के साथ होता है, जिस जल में वो पैदा हुई है, जी रही है, बड़ी होती है, वो मछली ने जो संग किया उस जल का, जब विपत्ति का समय आता है तो वो जल उस मछुआरे के जाल को छोड़ देता है, मछली को छोड़ देता है अकेला तड़पते हुए। क्या वो गद्दार नहीं है? क्या वो गद्दार नहीं है कि जिसने जीवन भर उस मछली का संग किया, जब विपत्ति का समय आया उस मछली के लिए तो उस जल ने गद्दारी की और अकेला उस मछली को तड़पते हुए उस जाल में छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, वो मछली जो अब तट के ऊपर या उस नाव के ऊपर जो तड़प रही है, बस कुछ समय बाकी रह गया है उसके प्राण छूटने के लिए, मरने के लिए, उसकी मृत्यु के लिए तड़पते हुए, उद्धव जी आप बताइए आपकी विद्वत्ता से कि वो तड़पती हुई मछली किस लिए तड़प रही है, किसके लिए तड़प रही है? फिर से उस जल में जाने के लिए, जिस जल ने अभी अभी गद्दारी की उस मछली के साथ, वो मछली तड़पते हुए ये कह रही है मछुआरे से या पूरे संसार से कि मुझे अब भी उस जल से प्रेम है जिसने अभी अभी मेरे साथ गद्दारी की, कि जाल से निकल गया वो जल। और आप हमारे सामने प्रश्न चिन्ह रख रहे हो, एक मछली की वफादारी देखो जल की प्रति। चौथा उदाहरण पतंगा मौत। अग्नि से इतना आकर्षित, जो लौ होती है अग्नि की लौ, उससे इतना आकर्षित ये पतंगा होता है, परिक्रमा करता रहता है। देखा होगा आपने परिक्रमा। परिक्रमा कोई किसकी करता है? जब जिसको आराध्य मानता है ना। जैसे हम तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, उनको आराध्य मानते हैं। तो ये पतंगा अग्नि की लौ को अपना आराध्य मानता है, परिक्रमा कर रहा है, और यही पतंगा जब उस अग्नि में प्रवेश करता है तो वही अग्नि जिसको इस पतंगा ने अपने जीवन भर पूजा, आदरणीय माना, वो अग्नि जलाकर भस्म कर देती है इस पतंगे को। अन्य पतंगे देख रहे हैं कि हमारा साथी जलकर भस्म हो गया है, इस अग्नि, जिस अग्नि को उसने अपनी वफादारी दी, अपना स्नेह, अपना प्रेम दिया, वो अग्नि गद्दार निकलकर जलाकर भस्म कर दी उस पतंगे को। अन्य पतंगे फिर भी उत्साह से परिक्रमा करते हुए प्रवेश कर रहे हैं, और आप हमसे पूछ रहे हो कि हमारी वफादारी क्यों हम निभा रहे हैं भगवान कृष्ण के प्रति। यदि एक नगण्य सा पतंगा वो अपनी वफादारी निभा सकता है तो आप हमसे क्या पूछ रहे हो। और फिर वो अंतिम उदाहरण देते हैं हिरण का। हिरण जो कि ऐसा चुस्त जानवर है, शिकारी जंगल में बहुत दक्ष होगा तीर चलाने में, परंतु हिरण का शिकार बहुत दुर्लभ है, क्योंकि शिकारी की दक्षता से भी ज्यादा दक्ष हिरण की चपलता। तो शिकारी जानता है कि कमजोरी क्या है हिरण की, व्हाट इज द वीकनेस ऑफ दिस डियर। हिरण की कमजोरी है बांसुरी की धुन। हिरण के कान आपने देखे होंगे, तो बांसुरी की धुन जो है जब भी कोई बजाता है तो हिरण स्तब्ध हो जाता है, एक जगह पर फ्रीज जिसको कहते हैं। द डियर्स दे फ्रीज वेन एवर दे हियर द स्वीट प्लेइंग ऑफ फ्लूट। तो शिकारी ये कमजोरी जानता है और अपना तीर निकालने से पहले बांसुरी बजाता है। जब वो बांसुरी बजाता है तो हिरण वहां जहां पर वो खड़ा है वहीं पर स्तब्ध खड़ा रह जाता है, और उसे पता है कि ये एक जाल है, उसे पता है कि ये बांसुरी ये शिकारी बजा रहा है ताकि मैं एक जगह पर खड़ा रहूं, ये मुझे मार सके। जानता हिरण, जानते बूझते हुए हिरण वहां से हिलता नहीं, और वो शिकारी जब देखता है कि अब हिरण हिल नहीं रहा तो तीर निकालकर हिरण को वहीं पर खत्म करता है। तो एक कवि ने, गोपियां कह रही हैं कि ये हिरण जानते हुए अपने शरीर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, कई तीर, जब तक कि वो मरता नहीं, कई तीर अपने शरीर में वो आने देता है, क्योंकि उसका प्रेम, उसकी वफादारी वो शिकारी की बजाई हुई बांसुरी की ध्वनि के प्रति होती है। इसलिए गोपियां कहती हैं कि वो मरता हुआ हिरण, मरता हुआ जख्मी हिरण वो शिकारी से कहता है कि तू गद्दार तो निकला, मैं जानता था कि तू गद्दार है, तू गद्दार निकला, गद्दारी से मुझे मारा तूने, मेरी एक ही याचना है हे शिकारी तुझसे। हिरण कहता है, मेरे मरने के उपरांत, बस अब चंद सांसें मेरी बाकी रह गई हैं, मेरे मरने के उपरांत मेरे शरीर का ये जो चमड़ा है वो और मृदंग और तबले बजाने के लिए इस्तेमाल करना, ताकि ये जो ध्वनि है ये बरकरार रहे। लेट द म्यूजिक गो ऑन। ये हिरण की वफादारी उस शिकारी की ओर। तो गोपियां उद्धव जी से पूछ रहे हैं, क्या अब भी आप को डाउट है, क्या किसी को अब भी डाउट है इस संसार में कि भगवान 11 साल गोपियों के साथ रहे, ब्रजवासियों के साथ रहे और एक सदी का विरह विलाप उनको देकर चले गए, तो क्या वो अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण को छोड़ेंगी? कदापि नहीं। तो गोपियां इन 5 जानवरों के उदाहरण से हम सब के सामने ये प्रश्न रख रही हैं कि यदि एक तुच्छ भौतिक संसार का जानवर, एक चातक, एक भंवरा, एक मछली, एक पतंगा, एक हिरण, यदि वो अपनी वफादारी दिखा सकते हैं इंद्रिय भोग के लिए, तो क्या भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रति वफादारी नहीं दिखा सकते शुद्ध प्रेम के प्रति या शुद्ध प्रेम के कारण? तो गोपियां कह रही हैं, यदि वो वैष्णव, वो भक्त जो अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का शरणागत भक्त कहना चाहता है, यदि उसके अंदर इन जानवरों के समान वफादारी नहीं है, लानत है उस भक्त के ऊपर। क्या है? लानत है उस भक्त के ऊपर जो इन जानवरों की तरह भी वफादारी नहीं निभा सकता अपने भगवान के प्रति। शेम ऑन दैट डिवोटी इफ ही कैनॉट शो हिज लॉयल्टी टुवर्ड्स कृष्णा इफ इवन दीज मटीरियल मंडेन एनिमल्स कैन शो। तो ये जब उद्धव जी ने सुना, तो जैसे हमने कहा, उद्धव जी जो कि इतने बड़े प्रवक्ता, इतने बड़े विद्वान, बेवाक रह गए, स्पीचलेस। प्रश्न उठता है कि हम लोग इस्कॉन संस्था में जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने हृदय को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हम, हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ हैं उसको समझें। इसलिए आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 पहले उदाहरणों से समझने की कोशिश करेंगे। इस्कॉन की तुलना हमने 3 अलग अलग प्रकार से की है। एक बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात यूनिवर्सिटी, एक हाईटेक कार और टेलीविजन और रेडियो वेव्स। आपको लग रहा होगा अभी अभी हम गोपियों के महाप्रेम रस की चर्चा कर रहे थे, अभी हाईटेक कार, टीवी, रेडियो, क्योंकि हमारा स्तर यहां से शुरू होता है। तो क्या समझ में आ रहा है आपको? व्हाई I have compared ISKCON with these three analogies. को समझ में आ रहा है? यदि आप इन तीन चीजों से संबंध स्थापित किए हैं या करना चाहते हैं, तो किस प्रकार का संबंध किसी टॉप यूनिवर्सिटी के साथ एक विद्यार्थी का होगा? कि यूनिवर्सिटी बहुत प्रसिद्ध है, विख्यात है, परंतु विद्यार्थी को मेहनत करनी पड़ेगी. जस्ट बिकॉज द यूनिवर्सिटी इज वेरी फेमस एंड सेलिब्रेटेड डजंट मीन दैट द स्टूडेंट डजंट हैव टू डू एनीथिंग. स्टूडेंट हैज टू स्ट्रगल, स्टडी, मेक एक्स्ट्रा एंडेवर to match up with the fame of that university or the recognition of that university. जैसे कि IIT, इंडिया में कहते हैं कि IIT वो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में से है. तो IIT में किसी ने प्रवेश कर लिया, बस मैं अब IIT में प्रवेश कर लिया हूं, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. कई ऐसे IIT के स्टूडेंट्स बोलते भी थे कि IIT में प्रवेश लेना वो हमारी जिम्मेदारी है और IIT से पास आउट होना वो IIT की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है. दूसरा उदाहरण एक हाईटेक कार का, कि आपके पास जैगुआर, पता नहीं नासिक में तो नहीं होनी चाहिए, कौन सी है यहां आप लेके एवरेज हाईटेक कार कौन सी है यहां की नासिक की? बोलिए. क्या बात है. लेम्बोर्गिनी सुना है कभी? नहीं ना. मर्सिडीज, हाँ मर्सिडीज सब जानते होंगे. ऐसी हाईटेक कार जिसके अंदर सारे हाईटेक फीचर्स हैं और वो आपकी है, गिफ्ट में मिली आपको. कोई लोन नहीं, कोई कार लोन नहीं, कोई रिपेमेंट नहीं, कुछ नहीं, आपकी आपकी फेवरेट कलर, सब कुछ आपके. नारियल फोड़कर आपने टीका लगाकर उसको उद्घाटन भी किया उसका, उस गाड़ी का. जैसे एक पिताजी अपने बेटे को उसके 10th के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे थे तो उसको समझा रहे थे कितना इंपॉर्टेंट होता है. तो बेटा पूछता है, पिताजी अगर मुझे डिस्टिंक्शन, पता नहीं आजकल डिस्टिंक्शन को तो कोई मानता ही नहीं है, 90 उसके भी ऊपर आना चाहिए. जैसे एक परिवार में एक जो माँ अपने बेटे के बारे में कह रही थी, बोर्ड के रिजल्ट्स निकले तो कह रही कि वो जो पड़ोसी का लड़का है, मतलब अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि पड़ोसी का लड़का है उसको 99% मिला है. तो पूछा कि अच्छा 99, तो 1% कहां रह गया? बोला वो अपने बेटे को मिला है. तो वैसे ये पिताजी अपने बेटे को समझा रहे थे कि बोर्ड का एग्जाम कितना तुमको तरक्की. तो बेटा पूछता है कि यदि मुझे 90% मिले तो क्या दोगे पापा? पापा कहते हैं तुमको अगर 90% मिला ना, तुमको मैं 4-wheeler लाके दूंगा. 4-wheeler? अच्छा, यदि मुझे फर्स्ट क्लास 60% तक मिले तब क्या लाके दोगे? तुमको टू व्हीलर लाके दूंगा, बाइक। पापा अगर फेल हो गया तो तुमको थ्री व्हीलर लाके दूंगा, रिक्शा चलाना फिर। तो यदि हाईटेक कार और चलाना ही नहीं आता तो फायदा क्या? रोज उसकी आरती उतारेंगे या पीछे से धक्का मार के आगे ले जाएंगे? सो यू मे हैव द मोस्ट हाईटेक कार, बट इफ यू डू नॉट नो हाउ टू ड्राइव इट इन अ हाईटेक वे, व्हाट इज द यूज? सो इस्कॉन इज लाइक टॉप यूनिवर्सिटी, वी आर सपोज टू बी लाइक द स्टूडियस स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइ टू बी इन दैट टॉप यूनिवर्सिटी। इस्कॉन इज लाइक हाईटेक कार एंड वी आर सपोज टू बी दैट स्किलफुल ड्राइवर हु नोज हाउ टू प्रॉपरली ड्राइव दैट हाईटेक कार। The waves are there everywhere of TV and radio. You have to become the receiver. तो इसलिए ये तीन उदाहरणों से हम ये समझ रहे हैं कि ये जो इस्कॉन संस्था श्रील प्रभुपाद ने हमारे सामने हमको प्रस्तुत कर दी है, तो ये टॉप यूनिवर्सिटी के समान है, हाईटेक कार के समान है, सब कुछ है इसके अंदर। प्रश्न है क्या हम उसका लाभ ले पा रहे हैं कि नहीं? दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। व्हाट आर वी डूइंग? तो दो प्रकार के न्याय नीति शास्त्र में बताए गए हैं। एक है मर्कट न्याय और एक है मार्जर न्याय। मंकी लॉजिक और कैट लॉजिक, बहुत इंटरेस्टिंग है ये दोनों लॉजिक न्याय शास्त्र के अनुसार, और हम लोग इस्कॉन संस्था के अंदर प्रगति किस प्रकार से कर पाएंगे या इस्कॉन संस्था का लाभ किस प्रकार से उठा पाएंगे। जैसे एक बार मैं ये चर्चा कर रहा था ना कि यदि आप बहुत व्यक्तिगत रूप से मुकेश अंबानी या कोई ऐसे करोड़पति उद्योगपति को जानते हो तो आपसे लोग क्या पूछेंगे? यार तू मुकेश अंबानी को जानता है, उसके साथ उठना बैठना है? तो क्या फायदा उठाया तूने तेरे कॉन्टैक्ट का? तुरंत कैलकुलेशन क्या आता है? तू यदि मुकेश अंबानी के साथ उठता बैठता है तो तूने क्या फायदा उठाया? जैसे एक बार एक व्यक्ति कह रहा था, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन माइसेल्फ एंड बिल गेट्स। हाउ? ही नेवर कॉल्स मी, आई नेवर कॉल हिम, सेम। तो यदि कोई मुकेश अंबानी को व्यक्तिगत रूप से पर्सनली जानता है, उसके साथ उठता बैठता है, तो अगला व्यक्ति पूछेगा क्या फायदा उठाया भाई तेरे कॉन्टैक्ट का? और उसने कहा मैंने परसों एक लॉलीपॉप मांगी उससे, उसने दी मुझे एक लॉलीपॉप दी। लॉलीपॉप किराना वाला ही दे देगा ऐसे, छुट्टे पैसे नहीं होते तो लॉलीपॉप निकाल के दे देते। तू मुकेश अंबानी से लॉलीपॉप मांग रहा है? तो वैसे यदि कोई बाहर वाला आकर हमसे पूछे भाई आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कांटेक्ट में जाते हो हर संडे, क्या फायदा उठाया भगवान श्री कृष्ण के कांटेक्ट का? यदि ये प्रश्न पूछा जाए क्या फायदा उठाया उस कांटेक्ट का, और हम कहें फायदा खिचड़ी खाएंगे, खिचड़ी खा के आया। सो दैट इज अ वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन। हमने भगवान श्री कृष्ण जो कि सबसे, अगर कोई करोड़पति उद्योगपति जो भी है, इन सब के पतियों के पति तिरुपति, लक्ष्मीपति, यज्ञपति, इनके कांटेक्ट का क्या फायदा उठाया। जय श्री राधा मदन गोपाल जी की। तो यहां पर ये जो दो न्याय, मर्कट न्याय और मार्जर न्याय, मंकी लॉजिक एंड कैट लॉजिक। तो मर्कट न्याय क्या है, जैसे यहां पर आप देखिए कि जो बंदर का बच्चा होता है कैसे कष्टा पकड़ कर रखता है अपनी मां को। वृंदावन में आपने देखा होगा उसकी मां कूदती फांदती ये पेड़ से ये डाली से, वहां पर वो अपनी किटी पार्टी में बिजी है। पकड़ा हुआ है बच्चा, मम्मी कहां जा रही, वो पेड़ पे किटी पार्टी चल रही है, पकड़ा हुआ है वो, छोड़ता नहीं वो। इसको कहते हैं मर्कट न्याय। तो मर्कट न्याय, ये स्कूल के जो विद्यार्थी होते हैं, इस न्याय स्कूल के विद्यार्थी, उनका मानना क्या है कि भगवान को जब तक हम अपने प्रयासों से पकड़कर नहीं रखेंगे, भगवान का संग नहीं मिलने वाला। तो जैसे बंदर का बच्चा यदि वो प्रयास नहीं करे तो वो गिर जाएगा, उसी प्रकार से ये जो दर्शन शास्त्र का पालन करने वाले कहते हैं, इस फिलॉसफी को पालन करने वाले, दैट अनलेस यू एंडेवर यू कैन नेवर हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड। तुम्हारा प्रयास सर्वोपरि है। तो इसे कहते हैं मर्कट न्याय। इसके विपरीत है मार्जर न्याय। बिल्ली, अब बिल्ली को यहां पर देखो कि पिछले स्लाइड में हमने देखा बेचारा वो बंदर का बच्चा पूरा प्रयास कर रहा है छोटा सा, यहां बिल्ली का बच्चा कुछ प्रयास नहीं। तुमको उठाना है उठाओ, नहीं उठाना है मत उठाओ। हम तो आराम करेगा, बहुत रईस ज्यादा होता है बिल्ली का बच्चा, कुछ नहीं करता। तो बिल्ली वो जो मां है वो स्वयं अपने जबड़ों में उठाती है और उसको सुरक्षित स्थान पर रखती रहती है, यहां वहां, है ना। इसे कहते हैं मार्जर न्याय। तो जो इस स्कूल के विद्यार्थी हैं, मार्जर न्याय स्कूल के विद्यार्थी, उनका मानना क्या है, जब भगवान बुलाएंगे तब आएंगे आपके मंदिर में, उनके मंदिर में जब बुलाएंगे तब आएंगे। हम प्रयास करने से कुछ नहीं होता है। अरे आप लोग ही तो बोलते हो कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो मैं कैसे हिलूंगा। तो जब उनको हिलाना होगा तो वो हिला हिला के मुझे ले आएंगे। तो ये दूसरा एक्सट्रीम है कि हमको कुछ प्रयास नहीं करना, जो करेंगे राम भरोसे हिंदू होटल होता है ना, सब राम भरोसे चलेगा हमारा। एक बार मैंने देखा था एक होटल पे लिखा था राम भरोसे हिंदू होटल। आप नॉर्थ में देखो वैष्णव ढाबा, तो एक बार एक भक्त मेरे को पूछ रहे थे, प्रभु हम लोग इस्कॉन के डिवोटीज जा सकते ना, वैष्णव ढाबा है, वैष्णव के लिए खोला है उन्होंने। तो अब एक छोटी सी कहानी है कि एक पिता और उसकी छोटी सी लड़की रास्ते पर चल रहे थे, तो बहुत से कुत्ते भौंक रहे थे। तो पिताजी ने लड़की से कहा कि मेरी उंगली पकड़ ले। तो लड़की ने कहा, छोटी सी लड़की ने पिताजी से कहा, पिताजी नहीं, आप मेरी उंगली पकड़ लो। क्यों? क्योंकि यदि मैं आपकी उंगली पकड़ूंगी तो कमजोर है मेरी उंगलियां, छूट जाएंगी, परंतु यदि आप मेरी उंगली पकड़ोगे तो आपकी उंगलियां जो हैं वो शक्तिशाली हैं, और मैं छोड़ना भी चाहूं तो आप नहीं छोड़ने दोगे मुझे। बहुत छोटी सी स्टोरी, इंटरेस्टिंग है इसमें मॉरल। तो वैसे ही भक्त भगवान से कहते हैं कि भगवान आप मुझे पकड़ के रखो, मैं तो इधर उधर भागने की फितरत रखता हूं, आप मुझे पकड़ कर रखो। जैसे एक बार एक दुकान में एक परिवार गया, तो दुकानदार को परिवार जानता था। तो छोटा लड़का वो चॉकलेट के डब्बे की ओर देख रहा था। होता है ना, दुकान में परिवार जाते हैं तो उनकी नजर अलग अलग जगह पर रहती है। पति जो है उसकी नजर होती है गल्ले के ऊपर कि बिल कितना हो रहा है, पत्नी की नजर जो भी लिपस्टिक इत्यादि वहां, छोटे बच्चे की नजर होती है टॉफी चॉकलेट और उनके डब्बे सामने रखे हुए, तो उसकी नजर वो चॉकलेट और टॉफी के डब्बे पे। तो फिर वो दुकानदार ने देखा कि ये बेचारा चाहता होगा, दुकानदार ने कहा कि डब्बा खोल दिया, ले ले जितनी चॉकलेट चाहिए ले ले इसमें से। तो बच्चा बहुत चतुर था, बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने कहा नहीं नहीं आप दीजिए। तो अभी उसको उसको लगा कि बड़ा शालीन बच्चा है, खुद नहीं ले रहा, मुझे कह रहा है देने के लिए। तो माँ कहती नहीं नहीं तू ले ले, नहीं 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 आप दीजिए अंकल आप दीजिए। तो उसने कहा ठीक है, तो उसने डब्बे में से निकाल के उसके जितने मुट्ठी में चॉकलेट्स है उसको दे दिए। तो फिर अंकल ने पूछा कि क्यों ऐसे तूने कहा, कि तू खुद भी तो ले सकता था खुद की चॉइस की। तो उसने कहा कि देखो अंकल मेरी मुट्ठी कितनी बड़ी है, आपकी मुट्ठी कितनी बड़ी है, मैं अपनी मुट्ठी डालता तो एक दो चॉकलेट आती, आपकी मुट्ठी में देखो कितनी कितनी सारी चॉकलेट आई। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है कि जब भगवान देना चाहें तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, हृदय फाड़ कर कृष्ण प्रेम देते हैं। फट जाता है ना हृदय कभी कभी। एक बार एक छोटी लड़की ऐसे ही चॉकलेट की दुकान में गई, बहुत मासूम और नादान और क्यूट सी छोटी लड़की। तो वो दुकानदार को वो कहती है अंकल मैं कैसी लगती हूं आपको, है तू तो बहुत क्यूट है, क्यूटी पाए तू क्यूटी पाए, ए ले 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 क्यूटी क्यूटी पाए। तो लड़की फिर बोलती अंकल अंकल मैं सुंदर हूं ना, सुंदर, बहुत सुंदर है तू तो एकदम अति सुंदर है, तो मैं जब बड़ी होंगी तो आप मेरी शादी आपके बेटे से करोगे। तो बोला कि आजकल के बच्चे तो हाँ हाँ बेटी कर दूंगी, तेरी शादी मेरे बेटे से कर दूं। तो फिर अपने होने वाली बहू को चॉकलेट दो ना फ्री में। तो वैसे ही यहां पर उस लड़की ने अपने पिताजी से कहा, यू होल्ड माई फिंगर, बिकॉज इफ यू होल्ड माई फिंगर इट विल बी मोर टाइट एंड मोर प्रोटेक्टिव। तो हमारे आचार्य अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि एक तरफ है मर्कट न्याय, एक तरफ है मार्जर न्याय, तो मर्कट और मार्जर न्याय में से जो वैष्णव है वो कौन से न्याय का पालन करते हैं, क्या कहोगे आप? दोनों, मार्जर एवं मर्कट। तो पिताजी ने अपनी बेटी से कहा कि मैं तो तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, परंतु तुम्हें भी अपनी ओर से मुझे दिखाना है कि तुम्हें जरूरत है मेरी सुरक्षा की। सो सिमिलरली अवर वैष्णवाचार्यस दे गिव द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन मर्कट एंड मार्जर न्याय, विच मीन्स we have to endeavor and show Krishna that Krishna, we want you in my life, in our life. I want your protection, I want your mercy, and I'll show it by my enthusiasm. तो ये combination हमारे वैष्णव सिद्धांत का है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन, सर्कस के जो शेर होते हैं, आजकल अक्सर पेरेंटिंग में आप देखो कि जो बच्चों को चाहिए वो दे दिया जाता है, बच्चे जो भी मांगते हैं उनको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो मैं पेरेंटिंग में कहता हूं, डोंट जस्ट लीव valuables behind for your children when you leave. Better to leave values than valuables. You are not a successful parent if you simply leave behind valuables for your children. Badi jayadad, aisho aram ki zindagi, ye mat samjho ki aap bahut safal माता पिता रहोगे। मेक श्योर यू लीव बिहाइंड फॉर योर चिल्ड्रन वैल्यूज देन वैल्यूएबल्स। तो क्या संबंध है सर्कस के शेरों का? सर्कस के शेरों को रोज पका पकाया मांस मिलता है खाने के लिए, उनको रोज अच्छी से जो भी किसी भी जानवर का मांस वो रिंग मास्टर रोज खिलाता है शेरों को। तो ऐसे शेर जो सालों साल सर्कस के शेर बने हुए, उनको एक दिन जंगल में छोड़ा गया। तो जब उनको जंगल में छोड़ा गया तो वहां के जंगली कुत्तों ने शेर के ऊपर प्रहार किया और मार डाला। कैसे संभव है ये? इसलिए संभव हुआ क्योंकि शेर, सर्कस का शेर होने के वजह से उसको बना बनाया मांस मिलता था, इसलिए शिकार कर कर खाने की आदत छूट गई थी उसकी, इसलिए कुत्तों तक ने उसका शिकार कर लिया। सो द पॉइंट इज, डोंट मेक योर चिल्ड्रन इनटू सर्कस टाइगर्स, कि बना बनाया सब कुछ उनको देते रहो देते रहो देते रहो, तो जब वो बड़े होंगे और जब इस संसार में जाकर उनको खुद का शिकार करना पड़ेगा तो उनकी आदत ही नहीं रहेगी। सो देयरफॉर इन डिवोशनल सर्विस आल्सो, क्या हम केवल पका पकाया बना बनाया चाहते हैं या मेहनत करना चाहते हैं? प्रश्न ये है। सो इन इस्कॉन डू वी वॉन्ट टू बिकम लाइक सर्कस टाइगर्स Or do we want to become tigers in the wild who know how to hunt for themselves? ये अंतर है सर्कस के शेरों का और जो जंगल के शेर होते हैं उनका. असली शेर जंगल का शेर. तो दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं. एक मैनेजमेंट का टर्म है, द ग्रास रूटर्स एंड द पैराशूटर्स. सो द ग्रास रूटर्स आर वन, दे स्ट्रगल एंड ग्रो. जो मेहनत कर कर, जैसे घास उगता है, मेहनत कर कर वो तरक्की करते हैं. और जो पैराशूटर्स होते हैं वो कौन सी कैटेगरी के होते हैं? बस तैरते रहो आकाश, एंजॉय द ग्लाइडिंग. सो द क्वेश्चन इज विच कैटेगरी वी आर इन. डू वी सिंपली वॉन्ट टू बिकम स्पेक्टेटर्स, पैराशूटर्स, फ्लोटिंग अराउंड? फिर से कॉम्बिनेशन दोनों न्याय का यहां पर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, मर्कट न्याय और मार्जर न्याय, मंकी लॉजिक, कैट लॉजिक. क्या कहोगे आप? क्या भक्ति के मार्ग में हमें पैराशूटर्स बनना है या ग्रास रूटर्स बनना है? बैलेंस अगेन ऑफ बोथ. सो देयरफॉर दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ हाउ एन ईगल फ्लाइज. चील को देखा होगा आपने उड़ते हुए, कि चील अपनी उड़ान कैसे भरता है. एक आपको छोटा सा वीडियो दिखाएंगे, चील उड़ान कैसे भरता है और फिर क्या लेसन है उस चील की उड़ान से हम साधकों के लिए, वो समझने की कोशिश करेंगे.
Well, you voted for it, so we braved the cold and these gigantic cameras to get some epic shots.
क्या समझ में आया आपको? अन्य पक्षियों की तुलना में चील जो उड़ान भरता है, अंतर क्या है? अन्य पक्षियों को आप देखो, उनको अपने पंख बहुत ज्यादा फड़फड़ाने पड़ते हैं, और चील कुछ समय के लिए अपना पंख फड़फड़ाता है फिर फ्लोट करता है। देखा होगा आपने, कितने समय तक ऐसे लगता है कि कोई परिश्रम नहीं है, फ्लोट कर रहे हो। साधना भक्ति चील की उड़ान के समान है। हम देखेंगे कई बार हम भगवान की कृपा की वजह से फ्लोट कर रहे होंगे भक्ति में, है ना? अपने आप एडवांसमेंट हो रहा है। इस्कॉन में आने के बाद समझ में नहीं आता है कि कैसे अपने आप हम एक माला, दो माला, 16 माला तक पहुंच जाते हैं, कैसे हम चार नियम, कैसे हम मंगल आरती, ये सारे अलग अलग जो विधि विधान है उसका पालन करने लगते हैं आसानी से, फ्लोटिंग। सो फ्लोटिंग फॉर एन ईगल इफ इट इज कंपेयर्ड टू कृष्णाज मर्सी, बिफोर फ्लोटिंग द ईगल हैज टू फ्लैप। यदि उसको 2 मिनट तक फ्लोट करना है तो उसी के अनुसार उस 2 मिनट के फ्लोटिंग से पहले उसको अपनी विंग्स को फ्लैप करना होता है ना, तब जाकर उतना वो फ्लोट कर पाता है। सिमिलरली इफ वी वॉन्ट कृष्णाज मर्सी टू बी मेकिंग अस फ्लोट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, वी हैव टू एंडेवर टू फ्लैप। बिना फ्लैप किए अगर हम, जैसे हमने पिछली बार वो कहानी सुनाई थी, वो तोता उड़ नहीं रहा था राजा का, तो किया क्या, उसकी डाल काट दी गई, जिस टहनी पर वो बैठा था जब वो काट दी गई तब अपने आप तोता उड़ने लगा। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मंकी एंड द कैट लॉजिक, मार्जर मरकट न्याय। कौन सा प्रिंसिपल है ये हमारा? दामोदर लीला का प्रिंसिपल। तो दामोदर लीला में आप देखो कि जो 2 उंगलियां हैं, कितनी बार हम इसकी चर्चा करते हैं, वो 2 उंगलियां कौन सी हैं? जहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं माता यशोदा के उदाहरण के द्वारा कि 1 उंगली है हमारा प्रयास। माता यशोदा ने बहुत प्रयास किया, पसीने पसीने माता यशोदा हो गई थी बांधने के लिए, तो भगवान तब तक बंधे नहीं जब तक कि माता यशोदा ने अपना पूरा प्रयास नहीं किया। जितनी रस्सियां थी सारी रस्सियां इस्तेमाल कर ली, जब सारी पूरे ब्रज की रस्सियां इस्तेमाल कर ली उसके पश्चात माता यशोदा से नहीं बंध रहे थे भगवान, तब भगवान मुस्कुराते हुए कहे कि हां अब मेरी उंगली प्रस्तुत करूंगा मैं। तो हमें दामोदर लीला ऐसी लगती होगी कार्तिक के महीने में, कितनी मधुर लीला है, है ना? हम लोग दीप अर्पित करते हैं, दामोदर अष्टकम गाते गाते जो डायरोमा को हम देखते हैं कि कितने सुंदर दिख रहे हैं माता यशोदा, है ना, क्यूट से दामोदर। लेकिन वो क्यूट से दामोदर कितनी मेहनत कराएं वो उस डायरोमा में दिख रहा है, यहां पे देखो। तो इतनी मेहनत जो माता यशोदा की हुई उसके पश्चात फिर भगवान बंधे, और भगवान ये सिखाना चाह रहे थे कि यदि मेरे स्वयं की माता शुद्ध भक्त माता यशोदा से कोई कंपेयर कर सकता है भक्ति में, तो यदि मेरे स्वयं की माता, मेरे स्वयं के पार्षद शुद्ध भक्त गोलोक वृंदावन के, यदि उनको मैं इतनी मेहनत कराता हूं मेरी कृपा देने से पहले, और हम लोग यदि बैठे बैठे सोचें कि भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं, भगवान पूछ रहे हैं आप क्यों नहीं आ रहे हैं, द लॉर्ड इज अ सेंशियंट बीइंग, प्रभुपाद कहते थे. सेंशियंट बीइंग का अर्थ है भगवान के अंदर भावनाएं हैं. इसलिए इस संस्था का नाम क्या दिया है? कृष्ण भावनामृत. कृष्ण भावनामृत का अर्थ है हम भगवान श्री कृष्ण की भावना में रहें, और कृष्ण भावनामृत का एक और अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की भावनाओं को समझे. टू बी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा एंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्शियसनेस ऑफ कृष्णा, दैट इज द मीनिंग ऑफ टू बी इन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस. महाभारत में एक छोटा सा प्रसंग है, आज इस प्रसंग को सुनाकर हम विराम करेंगे हमारे प्रवचन को. महाभारत में भगवान श्री कृष्ण, पता है सबसे ज्यादा प्रेम भगवान श्री कृष्ण ने जो बहुत ही ऑब्वियस तरीके से दिखाया, पता है किसके प्रति दिखाया? किसके प्रति दिखाया? हाँ, एक गेस कीजिए. अभिमन्यु के प्रति. अभिमन्यु के प्रति भगवान ने ऐसा प्रेम दिखाया कि रोज अभिमन्यु जब छोटा सा शिशु बचपन में, जैसे होते हैं ना बच्चे डायपर्स पहनते, डायपर्स, तो महाभारत में बताया गया है लॉर्ड कृष्णा वुड नॉट अलाउ एनीवन एल्स टू चेंज द डायपर्स ऑफ अभिमन्यु, ही वुड डू हिमसेल्फ. अभिमन्यु किसके पुत्र थे? अर्जुन के. अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु मलमूत्र बचपन में जो बच्चा किसी के भी गोद में कर देता है, तो वो सब भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया था सुभद्रा को और अर्जुन को, ये मैं करूंगा, मेरा डिपार्टमेंट है. एवरी डे कृष्णा वुड क्लीन द डायपर्स ऑफ अभिमन्यु. कैसा लग रहा है सुनने में? इमेजिन कीजिए भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम अभिमन्यु के डायपर साफ कर रहे हैं. क्यों? क्यों इतना स्नेह एक अभिमन्यु के प्रति इतना? बहुत ही सुंदर कारण इसका हमारे आचार्य देते. बिकॉज कृष्णा ही नेवर गॉट दैट लव फ्रॉम हिज ओन मामा. भगवान कृष्ण अभिमन्यु के क्या थे? मामा. अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का भांजा. तो भगवान श्री कृष्ण जैसे अभिमन्यु पैदा हुआ तो भगवान श्री कृष्ण रोने लगे. आउट ऑफ फीलिंग्स लॉर्ड कृष्णा वॉज थिंकिंग व्हाई माय ओन मैटरनल अंकल नेवर लव्ड मी, व्हाई आई हैड टू किल हिम, फॉरगेट अबाउट ही लविंग मी. तो वो जो भगवान श्री कृष्ण अपने अंदर एक खालीपन महसूस कर रहे थे, देखिए गोपियों का प्रेम इतना मिला, माता यशोदा का प्रेम, देवकी वसुदेव, कितना प्रेम, कितने अलग अलग भक्तों ने भगवान को प्रेम किया, परंतु भगवान कह रहे थे मुझे मेरे मामा का प्रेम नहीं मिला. आप लोग कहोगे क्या आ सकती है ये? इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा इज द मोस्ट सेंशियंट गॉड, फुल ऑफ सेंटिमेंट्स, भावनाओं से युक्त, परिप्लुप्त भावनाओं से भगवान श्री कृष्ण हमारे, कि इतने भक्तों का प्रेम, सारे ब्रजवासियों का, मथुरा द्वारका वासियों का, सबका प्रेम मिला, परंतु फिर भी महाभारत में यह वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु को वो प्रेम देते हुए उस खालीपन को भर रहे थे। बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र की। तो हमें लग रहा होगा यहां हम नासिक में बैठे हुए हैं, जनरल वैद्य नगर, पूर्णिमा बस स्टॉप, द्वारका कॉर्नर के पास, क्या भगवान श्री कृष्ण को हमारे प्रेम की जरूरत है? यदि भगवान श्री कृष्ण कंस जैसे राक्षस के प्रेम की अभिलाषा कर रहे थे तो क्यों नहीं हमारे प्रेम की अभिलाषा भगवान कर रहे हैं इस वक्त? एट दिस टाइम लॉर्ड कृष्णा, इफ ही बिकम्स डिजायरस ऑफ द लव ऑफ सच अ क्रूअल मैटरनल अंकल लाइक कंसा, व्हाई इज ही नॉट डिजायरस ऑफ अवर लव? द क्वेश्चन इज, आर वी गिविंग दैट टू कृष्णा? इवन दो ही इज आत्माराम, इवन दो ही इज सेल्फ सफिशियंट, इवन दो ही इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ, इवन इफ वन लिविंग एंटिटी इज नॉट लविंग कृष्णा, कृष्णा फील्स एम्प्टी, ही फील्स एम्प्टी इन हिज हार्ट that one living entity somewhere in the material world is not loving me. I feel for that. तो ये बहुत ही मार्मिक एक प्रसंग है महाभारत का, जहां पर बहुत कम लोग जान पाए कि भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु, छोटे से अभिमन्यु के डायपर्स क्यों साफ कर रहे थे। सो देयरफॉर द पाथ ऑफ भक्ति इज द पाथ ऑफ रेसिप्रोसिटी, आदान प्रदान, कि हमें अपनी ओर से भगवान श्री कृष्ण हमें चाहिए, इसका ऐलान हमें करना है। केवल चुप्पी साध कर नहीं बैठना है कि भगवान कर लेंगे हमारे जीवन में जो जरूरी है, नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब मॉर्निंग वॉक में वो जो बदक क्वैक कर रहे थे, उनको दाना दे रहे थे प्रभुपाद, तो प्रभुपाद ने कहा, व्हाई दिस वन डक इज गेटिंग मोस्ट ग्रेन्स? बिकॉज दिस वन डक इज क्वैकिंग द मोस्ट लाउडेस्ट, therefore is getting the most grains. तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण सबको कृपा देने के लिए अवतरित होते हैं, परंतु उनमें से यदि हम सैकड़ों मनुष्यों में से, जीवों में से यदि हम उस बदक की तरह सबसे ज्यादा जोर से क्वैक करने लगे, कैसे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, तो अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण हमारी ओर आकर्षित होकर हमें उनके कृपा के दाने देंगे। बोलो श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका?
हरे कृष्णा। अभिमन्यु को इतना भगवान प्रेम करते थे, फिर उसको उनको बचाया क्यों नहीं कुरुक्षेत्र में?
बहुत अच्छा, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। तो भगवान ने अभिमन्यु को बचाया क्यों नहीं? सबसे पहला प्रश्न है कि भगवान अपने भक्तों को बचाते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है? हम लोगों का डेफिनेशन क्या होता है कि, अभी जयदेव महाराज का एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, जयदेव महाराज उस आर्टिकल में लिखे हैं कि एक जो कर्म मिश्र भक्त होता है वो भगवान से प्रार्थना करता है, कृष्णा ब्लेस माय हाउस, कृष्णा ब्लेस माय फ्लैट स्क्रीन टीवी, कृष्णा ब्लेस माय लैपटॉप, कृष्णा ब्लेस माय वॉशिंग मशीन। तो क्या भक्त भगवान इन सब को सुरक्षित रखें तभी वो हमारे प्रोटेक्टर हैं। तो हमारा जो डेफिनेशन है प्रोटेक्शन का कि मुझे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, मेरे कोई लोन सारे क्लियर हो जाने चाहिए, मेरे घर परिवार वाले एकदम दंडवत प्रणाम करते हुए मेरे साथ व्यवहार करने चाहिए, ये सब कुछ सरकार मेरे अनुसार होनी चाहिए, ये प्रोटेक्शन है। नहीं, भगवान प्रोटेक्शन देते हैं, कॉन्शियसनेस, ही प्रोटेक्ट्स अवर कॉन्शियसनेस। एंड इवन इफ इट टेक्स टू डिस्ट्रॉय योर बॉडी, ही विल डिस्ट्रॉय योर बॉडी टू प्रोटेक्ट योर कॉन्शियसनेस। बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक भगवान लगता है। तो भगवान अभिमन्यु पर इतना विश्वास रखे थे कि अभिमन्यु की जो मृत्यु जिस तरीके से हुई या की गई, भगवान उसको एक कारण बनाना चाहते थे कर्ण द्रोणाचार्य सबको खत्म करने के लिए। सो हाउ डिड अभिमन्यु सर्व, दैट इज द क्वेश्चन वी हैव टू आस्क। अभिमन्यु सर्वड इन महाभारत बाय सैक्रिफाइसिंग हिज लाइफ सो दैट कृष्णा यू गेट अ सॉलिड रीजन टू किल देम। माई डेथ विल गिव अ सॉलिड रीजन सो दैट कृष्णा विल नेवर बी ब्लेम्ड, कोई आप पर उंगली नहीं उठाए। इसलिए आपकी इमेज मेंटेन करने के लिए अभिमन्यु भगवान से कहते हैं कि मैं 16 वर्षीय अभिमन्यु अपना जीवन बलिदान करता हूं। दैट इज द रीजन एंड दैट वॉज द बॉन्डिंग बिटवीन कृष्णा एंड अभिमन्यु। देन ओनली यू फाइंड कृष्णा क्लीनिंग द डायपर्स ऑफ अभिमन्यु। हम लोग सोच रहे होंगे क्या भगवान मेरे भी डायपर साफ करेंगे। करेंगे, हमारा डायपर है कहां? इधर हृदय में, सारा मलमूत्र यहीं भरा हुआ है हमारा, सारे अनर्थ गंदगी गटर सब इधर ही है हमारा। तो हाँ, हरिनाम के रूप में भगवान उसको भी साफ करेंगे यदि हम अभिमन्यु की तरह विश्वासु बने तो। समझे? री बोल, और कोई प्रश्न? जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
इस ग्रह शिक्षाश्रम प्रभु की जय।